हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना और ज़रूरत पूरी होने के बाद उन्हें तड़पता छोड़ देना, ये उसकी फितरत है। अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि तड़पना क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपनी ज़िंदगी को अपने मतलब के लिए नियंत्रित करता है और अंत में आपको मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। तन्हाई कैसी टीस पैदा करती है दिल में, इसका एहसास अब उसे होगा। इस शादी के बाद वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकेगी और अपने करीब मैं उसे आने नहीं दूंगा। उसे मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत मिलेगी और ये रिश्ता उसे सिर्फ ज़िल्लत भरी ज़िंदगी देगा। ना वो मेरी कैद से छूटकर किसी और के पास जाने के काबिल रहेगी और ना ही सुकून से मेरे साथ रह सकेगी। पैसों के लालच में उसने जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है। अब उसे बेशुमार दौलत मिलेगी, पर मान सम्मान, इज्जत और प्यार, जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की, उसके लिए उसे तड़पना होगा। तरसेगी वो प्यार के लिए, पर उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी नफ़रत मिलेगी। बहुत आसमान में उड़ने का शौक है उसे। ये शादी उसके पंखों में काटने के लिए कर रहा हूँ मैं। इस सोने के महल में उसे कैद करने के लिए ये ज़रूरी है। उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही होगा, और अगर इसमें मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती भी है तो भी मुझे खुद की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरी ज़िंदगी का अब बस एक ही मकसद है, वो है धृति अवस्थी की बर्बादी, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। अर्नव की आँखों में नफ़रत और बदले की भावना के साथ धृति को बर्बाद करने का जुनून नज़र आ रहा था। उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से तमतमा उठा। उस लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आराम से कहा, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। अर्नव ने उसकी बात सुनी तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और इसके साथ ही उसके दाहिने गाल पर हल्का सा डिम्पल उभर आया, पर अगले ही पल उसका चेहरा एक बार फिर भावहीन हो गया। उसने सपाट लहजे में कहा, जो कहा था वो हो गया। जैसा कि तूने कहा था सब वैसा ही किया था। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा और आगे भी सब वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। अर्नव ने हामी भर दी। उसके माथे पर अब चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर बिना किसी भाव के बोला, मेरे रूम के डेकोरेशन का काम शुरू करवा दे। उसकी बात सुनकर उस लड़के के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई, पर वो चाहकर भी कुछ कह न सका और नौकरों को कुछ समझाकर ऊपर भेज दिया। वो बात कह ही रहे थे कि पंडित जी ने मुहूर्त होने की बात कह दी। अर्नव की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी गुस्से भरी निगाहें उस कमरे की ओर घूम गईं जहां एक घंटे पहले धृति गई थी। जैसे ही उसने निगाहें उस ओर घुमाई, अगले ही पल माधुरी के साथ धृति ने उस कमरे से बाहर कदम रखा। अर्नव ने एक नज़र उसे देखा और घृणा से अपनी निगाहें फेर लीं। वहीं दूसरे लड़के की निगाहें जब धृति पर पड़ीं तो वो उसे देखता ही रह गया। सुनहरे रंग का डिज़ाइनर लहंगा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लंबे रेशमी बालों को जूड़े में बांधकर उन पर गजरा लगाया हुआ था। बालों की कुछ लटों को जूड़े से बाहर निकाला हुआ था, जो उसके गालों पर अटखेलियाँ कर रही थीं। उस गोल्डन लहंगे पर ग्रीन और रेड के कॉन्ट्रास्ट का हैवी दुपट्टा था, जिसको उसके सर पर सेट करने के बाद कमर से लेकर कमर पर सेट किया हुआ था। चांद सा सोना मुखड़ा जिस पर हल्का मेकअप किया हुआ था। चौड़ा माथा पट्टी जिसमें से निकलती छोटी छोटी लड़ियों से उसका आधा माथा ढक चुका था। बीच में लटकता सुंदर सा गोल्डन कलर का मांग टिका उसके माथे पर सजा हुआ था। उसके ठीक नीचे छोटी सी स्टोन वाली लाल बिंदी लगाई हुई थी। बड़ी बड़ी कजरारी काजल से सनी आँखें जिस पर पलकों का पहरा था, हल्के गुलाबी गाल, नाक में पहनी बड़ी सी नथ जिसने उसके सुर्ख लबों को आधा ढक दिया था, और उसके गालों से होते हुए उसे बालों पर सेट किया हुआ था। गले में गले से सटा जड़ाऊ हार और उसके बाद दो थोड़े बड़े हार, कानों में उस हार के सेट का हैवी झुमका पहना हुआ था, गोरी कलाइयों में लाल और क्रीम कलर का भरा भरा चूड़ा और उसमें लगे कलीरे, पांचों उंगलियों में पहनी रिंग से जुड़ा ब्रेसलेट जो उसकी कलाई पर बांधा हुआ था, दुपट्टे के ऊपर से पहनाया गया कमरबंद जो उसकी पतली कमर को और ज्यादा आकर्षक बना रहा था, पैरों में भारी पायल जो उसके पैरों में बेड़ियों जैसी लग रही थीं। बेहद हसीन लग रही थी वो इस वक्त। इस कदर दिलकश लग रही थी कि अगर इस वक्त कोई लड़का उसे देख ले तो उसकी धड़कनें थम जाएं और वो खुद को उसके प्यार से डूबने से रोक न सके। उस दूसरे लड़के ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और उसके चेहरे पर नफरत के भाव उतर आए। उसने अपना चेहरा फेर लिया। धृति का उदास निश्चेष चेहरा उसकी बेबसी बताने को काफी था। इतनी तकलीफ में थी वो इस वक्त कि उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। मेकअप से लबों के ऊपर का तिल छुप गया था। उसके कदम अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। इतना हैवी जोड़ा, उस पर इतने हैवी गहने और पैरों में पड़ी वे बेड़ियां और दिल में दफन दर्द, वो चाहकर भी अर्णव की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ वो अपनी बर्बादी के नज़दीक जा रही थी। इसका एहसास था उसे, शायद इसलिए उसके कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं थे। वो बेहद धीमी चाल से आगे बढ़ रही थी और उसके हर बढ़ते कदम के साथ उस सन्नाटे में उसके पायलों की छन छन की आवाज़ गूंज रही थी, जो अर्णव के कानों में शीशे सी चुभ रही थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ पल तो वो खामोशी से उसके तरफ पीठ किए खड़ा रहा, फिर मुड़कर गुस्से में उसकी ओर बढ़ गया। धृति की कलाई को अचानक ही किसी ने कस के पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट में लगे स्टार्स उसकी कलाई में चुभने लगे। धृति, जो अपनी ही सोच में गुम माधुरी के साथ धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, दर्द होते ही उसने अपनी निगाहें उठाईं और भरी निगाहों से अर्णव को देखने लगी, जो सामने देखते हुए उसकी कलाई थाम तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। धृति उसके पीछे पीछे खींची चली जा रही थी। ये नज़ारा देखकर माधुरी हतप्रभ सी वहीं खड़ी रह गई और उस लड़के जिसका नाम कबीर है, उसकी निगाहें भी उन दोनों पर चली गईं। अर्णव ने धृति को मंडप के पास लाकर झटके से उसके हाथ को छोड़ा तो वो बमुश्किल गिरते गिरते बची। उसने भरी निगाहों से अचरज से उसे देखा, पर अर्णव के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसने नौकर की ओर गुस्से भरी निगाहें घुमाई तो दो नौकर तुरंत हाथों में बड़ी बड़ी थाल लेकर वहां उपस्थित हो गए, जिसमें वरमाला रखी हुई थी। अर्णव ने अबीर को देखकर आंखों से ही कुछ इशारा किया, फिर वरमाला उठाकर धृति की ओर बढ़ते हुए बोला, अपनी ये सड़े से एक्सप्रेशन हटाकर जरा मुस्कुरा कर दिखाओ, आखिर शादी है। हमारी दुल्हन को देखकर लगना चाहिए कि वो ये शादी किसी दबाव में आकर नहीं कर रही है। धृति ने उसकी बात सुनकर अपनी पलकें चौंका लीं। ये देखकर अर्णव की भौहें तन गईं। उसके गालों को दबाते हुए उसके चेहरे को ऊपर किया और दांत पीसते हुए बोला, जो बोला जाए उसे एक बार में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे हुक्म की अवहेलना करे। और अब तुम्हें सारी जिंदगी यहीं रहना है मेरे साथ और मेरे दिए हर दर्द को मुस्कुरा कर सहना है। इसलिए अभी से दर्द में मुस्कुराने की आदत डाल लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना मेरी बात ना मानने के जुर्म में मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकोगी। चलो अब मुस्कुराओ, तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। धृति की आंखें छलक आईं, उसके आंसू देखकर अर्णव ने उसके चेहरे को छोड़ दिया। नफरत करता था उससे, पर इन आंसुओं ने उसे बेचैन कर दिया था। धृति ने एक बार फिर अपना सर झुका लिया। अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछने के बाद उसने अपने दर्द को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। उसकी दर्द भरी मुस्कान देखकर अर्णव ने अपना चेहरा फेर लिया। अगले ही पल बिना किसी भाव के उसने धृति के गले में वरमाला डाल दी।
धृति बुत बनी खड़ी रही तो अर्णव ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। उसका बढ़ता गुस्सा देखकर माधुरी दौड़कर धृति के पास आई और वरमाला उसे पकड़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, मैम, इससे पहले ही सर का गुस्सा भड़क जाए उन्हें वरमाला पहना दीजिए। धृति के कानों में उसकी बात पड़ी तो उसने भरी निगाहों से पहले उसे देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर माधुरी को बड़ा दुख हुआ, पर वो कर भी क्या सकती थी, जॉब थी उसकी यह। धृति ने अब अपने हाथ में पकड़ी वरमाला को देखा, फिर निगाहें झुकाते हुए आगे बढ़कर अर्णव को वरमाला पहना दी। अर्णव ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर मंडप की ओर बढ़ गया। धृति बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली गई। अर्णव ने उसे मंडप पर बिठाया, फिर खुद उसके बगल में बैठते हुए पंडित को खा जाने वाली निगाहों से घूर कर देखा तो उन्होंने तुरंत ही मंत्रोच्चारण के साथ शादी की विधियों को प्रारंभ कर दिया। घड़ी की सुई के आगे बढ़ते के साथ शादी की विधियां भी आगे बढ़ रही थीं। अर्णव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और धृति बुत बनी बैठी सूनी निगाहों से उस हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि को देख रही थी, जिसमें जिंदगी, स्वतंत्रता, खुशियां, स्वाभिमान, सुकून सब स्वाहा होता जा रहा था। शाम से रात हो चुकी थी। पंडित जी ने फेरों के लिए दोनों को खड़ा होने को कहा तो अर्णव तो खड़ा हो गया, पर धृति अब भी वैसे ही बैठी हुई थी और एक टक उस अग्नि को देखे जा रही थी। उसे यूं बैठी देखकर माधुरी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे खड़ा किया। गठबंधन हो चुका था और अब पंडित जी के बताए मंत्रों को दोहराते हुए वे उस पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। धृति किसी यंत्रचालित गुड़िया की तरह जो कहा जाता था सब कर रही थी और अर्णव वो तो मन ही मन उन वचनों के उलट वचन ले रहा था। सात फेरे समाप्त हुए तो धृति को अर्णव के वाम भाग में बिठाया गया। पंडित जी ने एक थाल अर्णव के आगे बढ़ा दी। उस थाल में सोने सा छोटा सा लाल और काले मोतियों में गुथा प्यारा सा मंगलसूत्र और सिंदूर की सुंदर सी डिब्दी के साथ चांद का एक सिक्का भी रखा हुआ था। पंडित जी के कहने पर अर्णव ने उस मंगलसूत्र को उठाकर धृति के गले में ऐसे पहनाया जैसे उसके गले में फांसी का फंदा बांध दिया हो। धृति को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो, पर वो खामोश बैठी रही और अपनी आँखों के सामने चल रहे अपनी बर्बादी के मंजर को खामोशी से देखती रही। मंगलसूत्र के बाद सिंदूर की बारी आई तो माधुरी ने आकर धृति के मांग टिक्के के ऊपर उठा दिया। अर्णव ने सिक्के से सिंदूर न लेते हुए नीचे दूसरी थाल में रखे सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसकी मांग में ऐसे भरा कि उसके बाल, माथा और चेहरा सब पर सिंदूर फैल गया। मांग टिक्का अपनी जगह से हिल गया। धृति का शरीर कांप उठा और पलकें झुक गईं। अब तक जिन आंसुओं को उसने रोका हुआ था वे उसकी झुकी पलकों के नीचे से निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। आगे